आयान और ज़ोया लखनऊ आकर होटल में रुके हुए थे। रात का समय काफी बढ़ चुका था और दोनों थकान और बेचैनी के बीच चुपचाप अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। आयान अपनी सोच में डूबा था। ज़ोया उसके पास आई, हल्की नाराजगी और मासूमियत के मिश्रित अंदाज में बोली, क्या बात है, इतना उदास क्यों लग रहे हो? ऐसे भी क्या सपना कि तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ जाए? मुझे तो लगा था हम हनीमून पर आए हैं, मैं तो तुम्हारी तरफ कुछ और उम्मीदें रख रही थी। उसकी आवाज में हल्की बनावटी झुंझलाहट थी, मगर उसके शब्दों के पीछे एक स्पष्ट चाहत छिपी थी। आयान ने उसकी ओर देखा। ज़ोया ने उस समय एक बेहद खूबसूरत शॉर्ट नाइटी पहन रखी थी, जिसके कंधों पर पतली स्ट्रैप्स उसकी त्वचा के रंग को और निखार रही थी। उसकी नजरों में वो हॉट और मोहक लग रही थी। आयान हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है तुम भी मेरी तरह धीरे धीरे मेरी आदत में ढल रही हो। फिर उसने उसे अपनी तरफ खींचा। ज़ोया की छोटी सी हंसी कमरे में गूंज उठी जब वो उसके ऊपर गिर गई। आयान ने उसे अपनी बाहों में संभाला, उसकी कमर को हल्के हाथों से पकड़कर नजदीक खींच लिया। ज़ोया ने उसकी बाहों में खुद को महसूस करते हुए धीमी आवाज में कहा, बस यही। आयान ने उसकी बात काटते हुए कंधे की पतली स्ट्रैप्स को धीरे से साइड किया और साथ ही उसके कंधे पर हल्का सा किस किया। बोलो मत, बस चुप रहो, उसने गहरी धीमी आवाज में कहा। ज़ोया ने उसकी नजदीकी महसूस की, उसकी गर्मी, उसका दिल, उसकी हर सांस सब उसके भीतर झकझोरने लगे। आयान भी अपने भीतर उठ रही भावनाओं को महसूस कर रहा था। उसकी सोच, उसकी रोक सब धुंधले पड़ गए थे। बस उस पल में सिर्फ वो थे, एक दूसरे के बेहद करीब, सांसें आपस में मिल रही थीं और हर हल्की छुअन एक कहानी कह रही थी। ज़ोया ने आहिस्ता से उसकी बाहों को अपने चारों तरफ लपेटा और आयान ने उसका हाथ पकड़कर अपने कंधे से और नजदीक खींचा। दोनों के दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे दुनिया के सारे शोर बंद हो गए हों। उस रात होटल के कमरे में दोनों की नजदीकी धीरे धीरे बढ़ रही थी। हर छुअन, हर हंसी, हर हल्की नजरों की टकराहट एक दूसरे की चाहत को और गहरा कर रही थी। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एहसास, सिर्फ पल की गर्मी। कमरे की हल्की लाइट अब बंद हो चुकी थी। आसान सी हवा में उनकी सांसें आपस में टकरा रही थीं और हर पल, हर स्पर्श उनके बीच की नजदीकी को और गहरा कर रहा था। ज़ोया और आयान अब सिर्फ एक दूसरे के लिए थे। हर बात, हर चिंता, हर थकान सब भूल चुके थे। अब सिर्फ उनका प्यार और उनकी चाहत बची थी। ज़ोया ने हल्की नाराजगी और मासूमियत के मिश्रित अंदाज में कहा, अब सोना नहीं है क्या? टाइम देखो, आधी रात से ज्यादा हो चुका है। आयान ने उसे नजरों में झांकते हुए मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में प्यार, शरारत और एक गहरी चाहत सब थी। बस तुम ही हो और तुम्हारा प्यार, उसने धीरे स्वर में कहा। ज़ोया ने हल्की नाराजगी और चाहत के साथ कहा, पहले पहले किसने शुरू किया था, कोई बता सकता है? आयान ने उसे नजदीक खींचा, उसके होंठ उसके कंधे के पास घिरे और ज़ोया ने उसका चेहरा अपनी गर्दन में छुपाया। अगर मेरी बीवी इतनी हॉट नजरों के सामने आएगी, मैं खुद पर कंट्रोल कैसे करूं? उसने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोचा। ज़ोया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अब बस करो, बहुत हो चुका, मैं थक गई हूँ। आयान ने उसकी कमर को अपने हाथों में कसते हुए धीरे से कहा, बीवी आदत डाल लो, इतने दिन हो गए हैं, जब हम शुरू होते हैं रुकते नहीं। उनका शरीर, उनकी सांसें, उनकी नजरें सब एक दूसरे में गहराई से घुल गई थीं। कोई रोक, कोई दबा हुआ एहसास नहीं। ज़ोया ने आहिस्ता से कहा, देखो जो निशान आपने मुझे दिए हैं, कल देखना। आयान ने उसे अपने पास खींचा, उसका चेहरा अपनी हथेली में छुपाया और हल्की हंसी में बोला, कोई बात नहीं, हनीमून पर ऐसा हो जाता है। रात के उस पल में उनके बीच सब कुछ बस प्यार और नजदीकी बनकर रह गया। आंखें बंद थीं पर हर स्पर्श बोल रहा था। हर हल्की छुअन, हर धीरे धीरे की गई नजर, हर गहरी सांस सब एक नदी की तरह बह रही थी जिसमें सिर्फ वे दोनों डूबे थे। आयान ने धीरे धीरे ज़ोया के कान के पास अपना चेहरा झुकाकर कहा, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी नजरों की नरमी मैं हर पल महसूस करना चाहता हूँ। ज़ोया ने उसकी बाहों में सिर दबाया और हल्की हंसी के साथ बोली, तुम्हारा प्यार ही मेरा सब कुछ है, बस अब तुम्हारा पास होना ही काफी है। रात बढ़ती गई और दोनों की नजदीकी भी, हर छुअन अब बस एक दूसरे में समाने की कोशिश थी। आयान ज़ोया के बालों में उंगलियां फेर रहा था और ज़ोया उसके कंधे पर हल्की सी नजर डालकर मुस्कुरा रही थी। उनकी सांसें अब एक ही लय में थीं। हर स्पर्श, हर नजदीकी, हर हल्की हंसी और शब्द सब एक दूसरे में मिलकर उनके हनीमून की याद बन गया। कमरे में घुली खामोशी और उनकी आपसी गर्मी ने रात को और गहरा कर दिया। वे दोनों अब सिर्फ एक दूसरे में खो चुके थे। दिल, दिमाग और इंद्रियों की सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। ये रात, ये पल उनके प्यार और नजदीकी का सबसे गहरा एहसास बन गया और जब लाइट ऑफ हुई और कमरे में सन्नाटा छा गया, दोनों ने महसूस किया कि ये हनीमून सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि उनकी भावनाओं, प्यार और नजदीकी की एक नदी बन चुका था जिसमें वे दोनों पूरी तरह डूब चुके थे। जब सभी अपने अपने प्यार में डूबे हुए थे, कहीं एक साजिश भी चालू थी। रमेश मेहरा, जिसे मेहरा फैमिली से निकाल दिया गया था, अब पूरी तरह से अपनी योजना में डूब चुका था। उसकी साजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो दूसरों को बर्बाद करने के लिए अपने ही बेटे की जिंदगी को हथेली पर खेल रहा था। इस योजना की खतरनाक बात ये थी कि उसका खुद का बेटा दीपक इसी जाल में फंसने वाला था। कमरे में अंधेरा और धुंधली रोशनी का खेल चल रहा था। रमेश कंबल में आधा ढंका हुआ था। उसके सीने पर बाजू फैलाए एक लड़की लेटी हुई थी। कमरे की स्थिति बता रही थी कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। दोनों अभी भी पूरी तरह से कपड़े पहने नहीं थे। धुआं उठता और उसके इरादों की गहराई में मिल जाता। उसने धीमे और ठंडे स्वर में कहा, फिक्र मत करो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। दीपक के पीछे मैंने उसे लगा दिया है, अब सब मेरे हिसाब से होगा, उसने खुद को और मजबूत दिखाते हुए कहा। दीपक मेरा बेटा है, अगर मैं उसे परिवार वालों से अलग कर दूं तो वही मेरे हिसाब से चलेगा, और वो लड़की वही दीपक को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा देगी। रमेश की आंखों में साजिश की चमक थी। उसने सिगरेट की राख फर्श पर गिराई और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्यों फिक्र करते हो, मेरी सहेली है, इसे देखकर बड़े बड़े लोग भी अपने ईमान पर शक कर देंगे। दीपक क्या चीज है, वो लड़की उसे ऐसे घेर लेगी कि चाहे वो भागना चाहे नहीं भाग सकेगा। साथ ही रमेश मेहरा ने आगे बढ़ते हुए कहा, वेरी गुड, मुझे उसे बलवंत मेहरा और उसके बेटे को पूरी तरह बर्बाद करना है, और दीपक उस पर मुझे पूरा भरोसा है, यही वो है जो उन्हें तबाह करेगा। ये कोई साधारण योजना नहीं थी, ये शक्ति, चालाकी और मनोवैज्ञानिक खेल का मिश्रण था, जिसमें हर कदम पर दीपक और बलवंत मेहरा का भविष्य खतरे में था। रमेश की आंखों में ठंडक थी, मगर उसके इरादों में आग। हर हल्की आवाज, हर हल्का कदम उसके दिमाग में नई योजना के रूप में बदल रहा था, और इसी अंधेरे और साजिश भरे कमरे में सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक चलता रहा। सिर्फ परिणाम का समय बाकी था। अगली सुबह न्यारा समय पर ऑफिस पहुंच चुकी थी, मगर उसका दिमाग अभी भी रात की उथल पुथल से बाहर नहीं आ पाया था। वो अपने केबिन में बैठी काम शुरू कर चुकी थी, फिर भी उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, ज्ञान कपूर का आदेश। ऑफिस में तो उसे उसका कहना मानना ही पड़ता था, आखिर वो उसका बॉस था, लेकिन अब घर पर भी वही हुक्म चलाए, ये बात न्यारा को भीतर तक खटक रही थी। वो उसकी बीवी नहीं थी, वो उसकी एम्प्लॉय थी, उसने बीवियों वाले काम बिल्कुल भी नहीं करने थे, तो फिर वो उसके लिए खाना क्यों बनाए, क्यों उसकी जिंदगी पर उसका अधिकार हो। कहीं ज्ञान कपूर की लव स्टोरी उसी के लिए मुश्किल तो नहीं बन जाएगी। आयान और जोया किस लिए लखनऊ आए हैं, आखिर कौन सा राशिफल है आयान के सपनों में।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें।